नमस्कार, मैं पद्मिनी अरहंत, लेखिका और प्रस्तुतकर्ता padminiarhant.com एवं अर्धांगिनी दिव्य नियोग। आप सबका स्वागत है। आज का विषय है राजनीति खेल, पॉलिटिकल गेम। वातावरण ऐसा है कि राजनीति हर एक फील्ड जो मैदान दिखता है वहाँ पर राजनीति खूद पड़ती है। वो राजनीति में ही नहीं, अन्य क्षेत्र में भी राजनीति खेला जा रहा है जो देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक है। हाँ, जब हम प्रस्तुत करते हैं और अपनी राय सामने रखते हैं उसमें भी आपत्ति होती है। ये मैं भली भांति जानती हूँ कि जिन लोगों को आपत्ति होती है वो सत्ते पर बैठने के कारण और उनके जो प्रतिनिधि जो होते हैं उनके द्वारा जो ये संदेश भेजा जाता है कि ऐसे विषय चर्चा ना किया जाए, यहाँ तक कि वो नहीं चाहते हैं कि हम कुछ बोलें, कुछ विषय पर चर्चा करें। ये देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र और गणतंत्र प्रचारण किया जाता है वो वास्तव में लोकतंत्र या गणतंत्र नहीं है। अगर होता तो जो सत्ते पे बैठे हुए हैं और उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं वो चाहे सरकार के अंदर हो या मीडिया के द्वारा हो, उनको कोई आपत्ति नहीं होती। पहली बात तो ये है कि गणतंत्र या लोकतंत्र का नीम जो है वो फ्री स्पीच से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी भी नागरिक को अपनी राय या अपने विचार हैं वो सामने रख सकते हैं बिना कोई रुकावट, झिझक, चेतावनी कहीं से भी आए हुए। किसी भी नागरिक को अपने विचार, अपनी राय रखने की अधिकार होना चाहिए और होता है। ये असली लोकतंत्र और गणतंत्र में होता है। जिस लोकतंत्र और गणतंत्र में इस पूर्ण अधिकार, अपने विचार रखने की, हर एक नागरिक को अपने विचार रखने की जो पूर्ण अधिकार पर रोक टोक अगर होता है तो फिर वो जो सिस्टम जो है, वो सरकार जो है, वो लोकतंत्र या गणतंत्र नहीं हो सकता। हाँ, एक बात तो मैं अवश्य कहूँगी कि ये जो अपनी जो दृश्य जो है उसे बनाए रखने के लिए जो मुखौटा पहना जाता है मीडिया के ज़रिए या किसी को भी दाखिला कर देते हैं, किसी को भी शामिल कर देते हैं और उनको अपना एक इस अजीब और गरीब किस्से में हम क्या संदेश दे रहे हैं उसके बारे में गौर किया जाए, आमने सामने क्यों नहीं आते। ये तो एक कायरता होती है जब मीडिया के ज़रिए या किसी को पैनलिस्ट बनाकर टेलीविज़न में पेश करते हैं मीडिया के ज़रिए और ये संदेश देने के लिए, खबरदार अगर हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कुछ कहते हो तो हम तुम्हारे खैर नहीं, हम कतई इसका स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान हम केवल इतना कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री को डिफेंड मत कीजिए, प्रधानमंत्री के जो पॉलिसीज़ हैं उनके स्ट्रैटजीज़ जो हैं, प्रधानमंत्री ही नहीं उनके जितने भी इर्द गिर्द जो घूमते हैं उनके द्वारा पुश किया हुआ, उनके द्वारा बनाए गए योजनाओं पर मैं ध्यान देती हूँ, उसी पर गौर करती हूँ और उसी को मैं सामने लाती हूँ। अगर उस पर आपत्ति होती है तो मैं तो कहती हूँ कि ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। अगर इसमें आप लोगों को दिक्कत है तो फिर सामने आइए और अपनाइए। बातें मैं कर रही हूँ उससे आपको इसलिए आपत्ति हो रही है क्योंकि उसमें दम है जो मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी पिछले बार, जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो बहुत ही एक गंभीर रूप ले लिया है भारत के राजनीति में और उसके द्वारा चिंगारी भड़काया जाता है, उसके बारे में जब मैंने नज़र डाली, उसके बारे में मैंने रोशन डाली, तो फिर उसके लिए भी आपत्ति हो रही है। मान लीजिए कि वो लोकतंत्र नहीं है, अगर कोई अपना विचार नहीं रख सकते हैं, कोई अपनी जो राय जो है, जो समस्याएं हैं, इसके कारण मन मुटाव होता है, जिसके कारण अनबनी होती है समाज में, जो अनावश्यक है। क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ पर इतने सारे मज़हब, इतने सारे वर्ग और उससे भी बढ़कर ये जो सबसे बड़ी सरदर्दी जो जात पात की है, उसको भी लेकर कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि लोगों के ज़रिए नहीं हो रहा है ये। जितने भी अनबनी जो हो रही है समाज में और समुदाय में जो होता है, वो लोगों के बीच नहीं हो रही है। अगर लोगों के बीच हो रहा है तो ये राजनीति के द्वारा भड़काया हुआ होता है। राजनीति में जो भी होते हैं, वो चाहे रीजनल पॉलिटिक्स हो या नेशनल पॉलिटिक्स यानी कि राष्ट्रीय तौर पर होता है या क्षेत्रीय तौर पर हो, मगर होता ज़रूर है राजनीति के द्वारा, क्योंकि राजनीति में जो बैठे होते हैं वो अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत विचार बढ़ाने के लिए खेल रचाते हैं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा होने देते हैं, जिससे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करती हूँ, तो मेरे ख्याल से, मेरे राय में इसमें अगर आपत्ति होती है, तो फिर इससे साफ ज़ाय होता है, इससे ये पता चलता है कि राजनीति जो है वो लोकतंत्र या गणतंत्र की मान नहीं रखते, सम्मान नहीं करते। इसीलिए मीडिया के द्वारा, मीडिया के ज़रिए ऐसे जो चेतावनी जो दी जाती है, कायरता है, क्योंकि लोकतंत्र और गणतंत्र की मर्यादा रखते हैं। वो पहली बात ये सोचेंगे, ये मानेंगे कि नागरिक को अपनी जो राय, अपना विचार जो है सामने रखने की अधिकार है, उनको उन पर वो अगर कुछ सोच विचार करना चाहते हैं तो उसे करने देनी चाहिए। अगर जो भी कहते हैं कि नागरिक जो हैं उनको दबे रहना चाहिए और जैसे उन्हें कहा जाता है उसी तरह उन्हें पेश आनी चाहिए, तो फिर इसे लोकतंत्र मत कहिएगा। एक तरफ से लोकतंत्र और गणतंत्र कहा जाता है, जब निभाने की बारी आती है तब निभा नहीं रहे हैं। हर एक खेल में हार जीत वास्तविक संभावना है, कोई जीतते हैं कोई हारते हैं, ये नहीं कि सभी जीतेंगे या सभी हारेंगे, किसी ना किसी को तो हारना ही होता है। इसीलिए इसको अगर में बोलने का अधिकार, बोलने का हक होता है, अगर किसी को आपत्ति होती है तो फिर वो जो सिस्टम जो है वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में कही थी, राजनीति जो है वो राजनीति के सीमा तक नहीं होती, राजनीति फैलाया जाता है अन्य क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि मनोरंजन और खेल कूद में भी राजनीति का बहुत बड़ा गंभीर तौर पर ये खेला जा रहा है। इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मनोरंजन के लिए खेल जो है खेला जा रहा है तो उसे खेल रहने दीजिए, उसे भी राजनीति रूप मत दीजिए, उसे पॉलिटिसाइज मत कीजिए। पॉलिटिक्स जो है इसको ऐसे क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र से बाहर रहनी चाहिए। सभी क्षेत्र को अगर पॉलिटिसाइज किया जाता है तो फिर देश के लिए उन्नति और प्रगति का नारा जो हो रहा है उस पर धब्बा हो जाता है। खेल में जो रुचि रखते हैं, खेल के बदले उनका ध्यान राजनीति की ओर खींचा जाता है। हर एक खेल में हार जीत वास्तविक संभावना है, कोई जीतते हैं कोई हारते हैं, ये नहीं कि सभी जीतेंगे या सभी हारेंगे, किसी ना किसी को तो हारना ही होता है। इसीलिए इसको अगर एक राजनीति का रूप दिया जाता है, इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, मसला हो जाता है, इससे देश को ऐसे मामलों से बचा सकते हैं और इसके बदले सांस्कृतिक अपॉर्चुनिटी है, अवसर जो है उसे बढ़ा सकते हैं, उसे उत्साह कर सकते हैं कि ये जो खेल कूद से जो इंटरैक्शन होती है, एक कल्चरल प्रमोशन किया जा सकता है, एक सांस्कृतिक अवसर मिलता है, इसे बढ़ाने के लिए इसे अपनाना चाहिए। इसके बदले अगर इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, इसको एक राजनीति का रूप दिया जाता है, तो इससे और भी ज़्यादा बेकार की अनबनी और तनाव जो है वो बढ़ जाते हैं। तीसरी बात ये है कि ये कहा जाता है कि लोग जो हैं किसी को भी, जैसे मैंने पिछले बार ये बात सामने रखी थी कि जब भी कुछ हानिकारक होती है, जब भी कुछ नेगेटिव बुरी तरह का जो भी संभावना या घटनाएं होती हैं तो मेरे साथ जुड़ा जाता है। ऐसे घटियापन और ऐसे घटिया जो राजनीति खेला जाता है इसको तो मैं हर तौर पर हर तरीके से मैं इसका निंदन करती हूँ, क्योंकि वही ऐसे काम करते हैं जो खुद अपने ही आत्मा से परे रहते हैं, वही ऐसे घटियापन में उतरते हैं, क्योंकि उनके पास शायद और कोई चारा नहीं है। ऐसे करतूतों से उनकी नीयत सामने आती है, एक मुद्दा बना दिया है, क्योंकि आप जिनसे आदेश लेते हैं उनके आदेश पर आप चल रहे हैं और उनके आदेश के मुताबिक आप ये सब काम करते हैं, तो फिर ये आपकी अपनी फैसला है, ये आपने अपने आप ये रास्ता चुन लिया है, तो उसके अनुसार आप उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसे जो काम करते हैं जो किसी को बिना वजह, बिना कोई सबूत के, बिना कोई ऐसे ही यू नो बार बार कोई भी घटनाएं, अगर बुरी घटनाएं होती हैं, बुरा जो शगुन होता है उसका मिलन, उसका जो एसोसिएशन जो है यू नो मेरे साथ जब जोड़ दिया जाता है, इससे साफ पता चलता है कि मेरे दुश्मन जो हैं उनके लिए मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे दुश्मनों के लिए मैं दुश्मन नहीं हूँ। अगर कोई दुश्मन है मेरे दुश्मन के लिए, वो खुद अपने ही दुश्मन है। अपनी जो मन के भीतर जो शैतान बैठा हुआ है ना, उस शैतान को पहचानिए आप लोग, उस शैतान से निपट लीजिए, उस शैतान को निपटना है आपने। मेरे साथ क्या जंग लड़ेंगे आप? मैंने आपको बार बार कहा है, मैं किसी के निमंत्रण पे नहीं कर रही हूँ, किसी के कहने पर या किसी के खुशामद के लिए नहीं कर रही हूँ। ये जो दिव्य नियोग जो है, ईश्वर की आदेश है, हर युग का जो आरंभ और अंत जो होता है, वो आप जैसे खिलाड़ी जो यू नो चंद दिनों के मेहमान हैं इस धरती पर, उनके बस की बात नहीं है। युग, हर युग के आरंभ और अंत जो होता है वो ईश्वर के हाथ ही होता है, ईश्वर के द्वारा ही होता है। ईश्वरी जो हैं वो निर्णय लेते हैं, ईश्वर ही जो हैं वो तय करते हैं। तो आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, टोकने वाले? अगर मैं जो कर रही हूँ उससे आप लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो रही है, तो आप अपनी जो काम जो है, अपनी जो करतूतें जो है, उस पर आप नज़र डालिए, उस पर आप गौर कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, जिसके वजह से मुझे ये जो बातें हैं सामने लाना होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जो आप, जो लोग मुझे अपनी दुश्मन समझते हैं, अपना विरोधी समझते हैं, मैं आपकी विरोधी नहीं हूँ। अगर कोई विरोधी है आपके भीतर और आपके मन में जो बैठा हुआ शैतान जो है, उसको निपटने की प्रयत्न करें और उस पर आप गौर करें, ताकि आप इस संसार को छोड़ेंगे जो हर हालत में करना होगा। अगर किसी को इस बात पर भी शक हो कि वो निरंतर निवासी हैं इस धरती पर, तो फिर मैं उसके बारे में भी मैं कई बार कह चुकी हूँ, का अंत होगा जब आपको यात्रा करनी होगी। उस यात्रा का जो अंतिम जो स्थान जहाँ पर आपने पहुँचना है, उसका निर्णय जो है आपके कर्मों से होता है। इसलिए इसलिए मैं तो आप लोगों को कहती हूँ कि आप अपने कर्मों पर नज़र डालें, आप अपने कर्मों पर विचार करें। यहाँ ये अपना जो भी समय आपके हर एक के पास जो समय जो है वो एक बहुमूल्य है, क्योंकि उस समय को नष्ट करना, जब इस जीवन में जो समय मिलता है उस समय को नष्ट करना और इस ऐसे फिजूल बातों में, ऐसे बेकार की बातों में कि मैं, मतलब मेरे दुश्मन वही है, मेरे साथ हमारे साथ जो भी बुरा होता है तो उसका कारण वही होती है, ये जो आप बलि की बकरी ढूंढते रहते हैं ना, तो उसको छोड़िए, आप इस पर रोशन डालिए कि अपने कर्मों पर रोशन डालिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ताकि आप की यात्रा जो है वो जहाँ पर आप पहुँचेंगे, अगर कर्मों पर ध्यान नहीं दिया जाता और ऐसे ही करतूतों पर आप अपना समय नष्ट करेंगे, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ पहुँचेंगे। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने और वो कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, कभी कभार वो करना बहुत ज़रूरी है, अपने गिरेबान में भी झांक के देखना। ये नहीं कि आप हमेशा किसी और को दोष देते रहेंगे, किसी और को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उसमें आपको एक तरह का सुकून मिलता है, एक तरह का खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए आप झूठ मूठ सही वो जो झूठा अनुभव के लिए आप जो बलि की बकरी जो मुझे बनाते हैं उसे छोड़िए, आप अपने जो कर्म है उस पर ध्यान दें, सोच विचार करें किस तरह आप अपनी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वो परिवर्तन तब आएगा जब आप अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे कि आप कितने नेक हैं, कितने शरीफ हैं, आपको किस तरह सुधरना चाहिए, ताकि आपकी जब अंतिम यात्रा करनी होगी तब आप अपने आत्मा पर जो बोझ होता है उसे हल्का कर सकें। ये विषय बहुत गंभीर और चर्चा करने लायक है, इसके कारण मैं इस भाग को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत शीघ्र और जो भाग हैं इस विषय पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। रमजान के शुभ मौके पर मेरी शुभकामनाएं। मैं पद्मिनी अरहंत, लेखिका प्रस्तुतकर्ता padminiarhant.com एवं अर्धांगिनी दिव्य नियोग, आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद और शुक्रिया।
जान वादों पे जा दे।